Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Vishwatmanandji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
पंचभूतों के रूप में जब वही दिख रहा है तो शरीर के रूप में कौन दिख रहा है? पंचभूत ही तो शरीर के रूप में दिख रहे हैं, तो ये अन्यथा प्रतीति है। ये माने ना जानने के कारण जब दूसरे रूप में वही वस्तु प्रतीत होती है तो उसको अन्यथा प्रतीति बोलते हैं, इसी को मिथ्या भी बोलते हैं। मिथ्या माने कोई चीज है और उसको मिथ्या कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो चीज है ही नहीं और दिख रही है उसको ही मिथ्या बोलते हैं। तो क्या चीज नहीं है इसमें संसार में, किस चीज को आप मिथ्या कह रहे हो? तो नाम रूप और कर्म, ये तीन चीजें संसार में मिथ्या हैं। देखो, नाम तो जब पैदा हुए थे तो कोई भी नाम नहीं था नारायण। फिर माता पिता ने किसी ने बब्बू रख दिया, किसी ने बबलू रख दिया, किसी ने कुछ रख दिया। फिर पंडित ने एक संस्कार कराया कि इसका आज से नाम ये होगा। फिर स्कूल में गए तो दूसरा नाम लिखवा दिया। अब जो सर्टिफिकेट में लिख गया वो परमानेंटली नाम हो गया नारायण। एक लड़के का नाम था, हमें याद है, उसका नाम था खचेड़ू मल। अब वो बहुत दिन पीछे दिखलाई पड़ा तो मुझे उसका नाम याद था, तो मैंने कहा कहो भाई खचेड़ू मल। बोले सर अब मैं खचेड़ू मल नहीं हूं। तो मैंने कहा अब क्या हो भाई? कि अब मैं राजकुमार हूं। मैंने कहा ऐसा क्यों? कि जब से मैं अध्यापक हुआ तो लड़के मेरे नाम को लेकर के हंसी मजाक उड़ाते थे, तो फिर मैंने वो सारी प्रक्रिया पूरी की, गजट कराओ, अखबारों में छपवाओ, ये करो वो करो, एफिडेविट लगाओ, तो वो सब करा करूं कि अब मैं राजकुमार हो गया हूं। मैंने कहा बहुत अच्छा है। तो जैसे खचेड़ू मल, अब मान लो गृहस्थ में कुछ नाम है और फिर संन्यास ले लो तो नाम बदल जाता है, तो नाम तो बराबर बदल ही रहा है, तो ये तो अध्यारोपित है ही। और रूप भी बदल रहा है। आपको बताया ही था कि जो जवानी में रूप रहता है वो बुढ़ापे में नहीं रहता। जो बचपन में रूप था, बबुआ, फूले फूले गाल, मुलायम मुलायम खाल, वो कहां रहता है? सब लटक जाता है मामला। अच्छा, फिर बचपन का फोटो देखते हैं ना, तो वो अब उसे क्या मालूम कि बचपन में मैं कैसा था, लेकिन लोगों ने बता दिया कि ये तुम्हारे बचपन का फोटो है। तो वो कहता है देखो ये मैं बैठा हूं, वो स्वयं कहता है देखो ये मैं बैठा हूं। अरे तुमने अपने बचपन का रूप कहां देखा भाई? तो ये नाम और रूप जो है ये सब दूसरे के बताए हुए सही चलते हैं। हम अपनी आंख नहीं देख सकते, अपना रूप नहीं देख सकते, शीशे में देखते हैं और अपने बारे में कल्पना करते हैं। हमारे हाथ पैर ऐसे हैं ये तो आप कल्पना कर सकते हो, लेकिन मेरा चेहरा ऐसा है ये तो आप प्रतिबिंब देख करके कल्पना करते हो। तो ये प्रपंच जो है इसमें नाम रूप और कर्म। अब एक आदमी शुरू में कोई कार्य शुरू करता है फिर काम बदल देता है। पहले दुकानदार था, फिर पढ़ पढ़ा के इंजीनियर हो गया, फिर वो काम भी छोड़ दिया, फिर और कुछ काम कर लिया, मिल ओनर हो गया। अब जो उसका आखिरी काम था वही काम जो है जाना जाएगा, और पिछले जितने काम थे वो सब बट्टे खाते में गए। तो नाम रूप और कर्म जो ये तीनों बदलते रहते हैं, इसलिए इनको मिथ्या बोलते हैं। ये आरोपित हैं, ये तत्व नहीं है। तत्व उसको कहते हैं जो आकार का, नाम रूप और कर्म का के आरोप का अधिष्ठान है, आरोप का भी और अपवाद का भी। कौन दुकानदार था, बोले मैं। कौन इंजीनियर हुआ कि मैं, कि कौन मिल ओनर हुआ कि मैं। तो मैं तो रहा नारायण एक, और ये तीन आरोप हो गए, एक आरोप ने दूसरे आरोप को काट दिया। तो ये अध्यारोप अपवाद सारी जिंदगी चलता रहता है। नाम रूप और कर्म ये तीन चीजें जो है मिथ्या है, और बाकी जो वस्तु है, चीज जो है, वो तो परमात्मा ही है। हम लोग असल में चीज को ही देखते हैं, व्यवहार जितना होता है वो होता चीज के ही साथ है, लेकिन नाम रूप और कर्म इतना हावी है हमारी दिलो दिमाग के ऊपर कि वो वस्तु तो फिसल जाती है, बस नाम रूप और कर्म ही लगे रहते हैं। हरिओम। तो ऐसी व्यापकता परमात्मा की है, सब वही बना हुआ है और कुछ भी नहीं बना हुआ है। तो स ही परमेश्वर सर्वगतः और स्वतंत्र। स्वतंत्र माने किसी दूसरे के शासन में ये नहीं रहता, इसका कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। परतंत्रो न भवति, परतंत्र नहीं होता है। छोटा बच्चा जो है ना, वो उसको आप जबरदस्ती बांध बूंध कर रखते हो, लेकिन रहना वो भी स्वतंत्र ही चाहता है। मैं नहीं खाता है इसको। क्यों नहीं खाता भाई, उसका टेस्ट है, नहीं खाता है उसको। बोले नहीं बेटा, ये तुझे फायदा करेगा। अब हमने वही चीज बनाई है तो उसको जबरदस्ती खिलाते हैं ना। तो उस समय वो परतंत्र है, तो वो समझता है अच्छा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब अपने मन की करूंगा। और करते ही हैं सब अपने अपने मन की। लेकिन ये तो स्वतंत्र है, परमेश्वर जो है इसके ऊपर दूसरे का शासन नहीं चलता है, क्योंकि शुरू से एक सा ही है। और एका और एक है। एक शब्द के भी दो अर्थ होते हैं। एक तो जो अनेक ना हो सो एक, अनेक का वारक है एक। कपड़े अनेक हैं, इसको विशेष और सामान्य बोलते हैं। एक जो है वो जाति होती है। तो विशेष जो होता है, अभी थोड़ा पारिभाषिक शब्द है, विशेष जो होता है वो सामान्य के ऊपर चढ़ा रहता है। जैसे रस्सी जो है वो तो है सामान्य, और एक आदमी उसमें सांप देखता है, एक आदमी उसमें माला देखता है, एक आदमी उसमें भूछिद्र देखता है। तो ये जो तीन रूप देख रहे हैं, ये हो गए इसके विशेष माने भेदक। तो सांप है, दूसरा कहता है माला है, तीसरा कहता है भूछिद्र है, लेकिन इन तीनों में जो एक है वो है रस्सी, उसको बोलते हैं सामान्य। तो क्या परमात्मा सामान्य जैसा है? तो बोले नहीं, परमात्मा तो अद्वय है, अद्वितीय है। उसका सानी भी कोई नहीं है, उसके बराबर का भी कोई नहीं है। भाष्यकार ने दोनों अर्थ किए हैं। न तत्सम अभ्यधिको वा अन्यो अस्ति, न तो कोई दूसरा उससे अधिक है और न उसके कोई बराबर है। परमात्मा जैसा कोई नहीं है, अनुपमेय है, उपमा का विषय नहीं है, और उससे अधिक होने का तो प्रश्न ही क्या है जब बराबर का ही कोई नहीं है। तो विशेष और सामान्य माने रस्सी और रस्सी में प्रतिभाषित जितने भी विकल्प हैं वो उन सब का जो अधिष्ठान है साक्षी है स्वयं प्रकाश अधिष्ठान है, ऐसा एक शब्द में बोलना हो तो ऐसा बोलेंगे, जो उनका स्वयं प्रकाश अधिष्ठान है। अब इसमें स्वयं प्रकाश माने साक्षी हो गया और अधिष्ठान माने आधार हो गया, तो स्वयं प्रकाश साक्षी और अधिष्ठान आधार। तो सारे प्रपंच का जो स्वयं प्रकाश अधिष्ठान है माने जो साक्षी भी है और जिसी में ये सारा प्रपंच सामान्य और विशेष करके भेद से प्रतीत हो रहा है। एक गाय मर गई तो क्या गायपना भी मर गया? संसार में जितनी गाय बची हैं उनमें सब में तो गायपना है ना, तो गोत्र जो है गायपना जो है ये तो है सामान्य, और जो एक गाय मर गई वो है विशेष। तो अब जैसे एक आदमी सीन से हट गया, मर गया समझ लो, एक आदमी मर गया तो दुनिया खाली हो गई क्या? मनुष्य तो रह गया ना जिंदा, फिर भी मनुष्य, एक मनुष्य चला गया तो विशेष तो चला गया और सामान्य रह गया। लेकिन ये सामान्य भी नहीं रहता जब महाप्रलय होती है, ये बात बताने के लिए महाप्रलय की बात कही जाती है। सामान्य और विशेष दोनों का जो स्वयं प्रकाश अधिष्ठान है वही शेष रहता है, वही नारायण है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है। एको न तत्समो अभ्यधिको वा अन्यो अस्ति। अब एको वशी, अब ये सबको अपने वश में रखता है। तो कैसे रखता है ये आपको शुरू में बताया कि सर्वगत होने से, सर्वव्यापक होने से सबको अपने वश में रखता है। इसके लिए जो अंतर्यामी ब्राह्मण है ना बृहदारण्यकोपनिषद में, उसकी श्रुति को ध्यान में रखना चाहिए। वहां तीन तरीके से अंतर्यामी को बताया है, अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैव। तो अधिदैव की श्रुति बहुत प्रसिद्ध है, यह पृथिव्याम तिष्ठन, पृथ्वी में जो बैठा है। जैसे एक तो धरती है जिस पे हम बैठे हैं और एक इस ये तो हो गया शरीर धरती का, और एक है धरती माता जिसकी पूजा की जाती है, जब मकान मकान बनाते हैं तो उसकी पूजन करते हैं ना धरती का। तो धरती का पूजन क्यों करते हैं भाई, ये तो जड़ वस्तु है। बोले नहीं, इसमें जो धरती माता है उसका पूजन होता है, माने जो परमात्मा है इसमें उसका पूजन करते हैं कि आपके एक हिस्से पर हम अपना मकान बना रहे हैं, तो आपको थोड़ा बोझ तो लगेगा लेकिन क्षमा करना। ये धरती माता का पूजन है। तो यह पृथिव्याम तिष्ठन, पृथिव्या अंतरो, पृथ्वी के जो अंदर रहता है। यम पृथ्वी न वेदो, जिसको पृथ्वी नहीं जानती। यस्य पृथ्वी शरीरम, जिसका शरीर पृथ्वी है। यह पृथ्वी अंतरो यमयति, और पृथ्वी के अंदर रह करके जो पृथ्वी का नियमन करता है। जैसे पहले बताया ना आपको, अहंकार से इस शरीर का नियमन होता है, तो ये अहंकार रूप से परमात्मा ही है। इसी अहंकार को ही जीव बोलते हैं। तो ये जीवो ब्रह्मैव नापरा, अहंकार को ये सांख्य का सिद्धांत सुनते सुनते हम लोग बुद्धि में इतनी जड़ता आ गई है कि अहंकार को चेतन स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए फिर ये त्रिराशिक लगानी पड़ती है, आभासवाद से करो कि अवच्छेदवाद से करो, कि नहीं नहीं अहंकार जीव नहीं है, अहंकार में जो चैतन्य का आभास है और जो अहंकार और आभास दोनों का अधिष्ठान है इन तीनों को मिलाकर के जीव बोलते हैं। अब ये पंचदशी बोल दी मैंने आपके सामने, साधिष्ठान साभास अहंकार का नाम जीव है। तो ये सब बाकी के क्यों जोड़ने पड़े? क्योंकि हम चेतन को ऐसा सच स्वीकार करना जानते नहीं है। सांख्य का संस्कार इतना ज्यादा है, वरना तो ऐसे ही समझ लो कि ये मैं रूप से जो अहंकार बैठा है, ये इस शरीर को चला रहा है, यही परमात्मा है, परमात्मा का ये चलाने वाला रूप है, ऐसा मानने में क्या हर्ज है? लेकिन ये ज्यादा सरलता हो जाती है ना, तो ज्यादा सरलता भी समझ में नहीं आती है। जब तक टेढ़ा मेढ़ा करके न समझाओ तब तक वो कहते हैं अरे भाई ये तो बड़ी विद्वत्ता की बात हुई। और ऐसे ही कह दो कि तुम्हारा ये मैं ब्रह्म है तो कोई मानने को तैयार नहीं है ना। बोले नहीं, मैं का पहले परिशोधन करो। तो परिशोधन की आवश्यकता तो इसीलिए है ना कि उसमें पहले से गड़बड़ डाल रखी है। इस शरीर को हम जड़ मानते हैं। अच्छा, क्या ब्रह्मज्ञानी भी इस शरीर को जड़ मानता है? उठाने का एक ढंग है और सिद्धांत यह है जो खुली आंखों से जो अनुभव होता है। तो ब्रह्मज्ञानी को खुली आंखों से सब ब्रह्म अनुभव होता है। इसमें देह देही विभाग नहीं है, ये उपनिषद श्रुति है नारायण कि आत्मा में देह देही का विभाग नहीं होता है। इतना तो देह और इसमें ये देही इतना छोटा सा, तो छोटा सा देही जो है वो ब्रह्म कैसे हो सकता है नारायण? देह तो इतना बड़ा है और देही इसमें छोटा सा है। बोले देह और देही, जड़ और चेतन, ये दोनों जो जिस एक में समाये हुए हैं, जिस एक में दृश्य हैं, वो आत्मा परमात्मा मैं हूं। ऐसा एक दफे निश्चय कर लो और निश्चय करके फिर इसी को धारणा रखो, बस हो गया। वेदांत तो इतना ही है नारायण। तो कहते हैं पृथ्वी के अंदर रह करके जो पृथ्वी का नियमन करता है, किस रूप से? कि पृथ्वी पृथ्वी माता के रूप से। जैसे शरीर में अहंकार है, ऐसे ही पृथ्वी में भी एक अहंकार है, उसके रूप से ये इसका नियमन कर रहा है। तो बोले वो कौन है? कि एष ता आत्मा अंतर्यामी अमृतः, वही तेरा आत्मा है, वही अंतर्यामी अमृत अविनाशी है। अब इसी प्रकार से सब भूतों में मां गिनाए हैं, पृथ्वी में, सूर्य में, चंद्र में, और फिर शरीर में गिनाए हैं, प्राण में, नारायण, और आखिर में कह दिया अदृष्टो दृष्टा, अश्रुतः श्रोता, अमतो मन्ता, अविज्ञातो विज्ञाता, नान्यत अतोस्ति दृष्टा, नान्यत अतोस्ति श्रोता, नान्यत अतोस्ति मन्ता, नान्यत अतोस्ति विज्ञाता, एषतः आत्मा अंतर्यामी अमृतः। ऐसा तेरा आत्मा जो है, एष माने यही है तेरा आत्मा अंतर्यामी। आत्मा और अंतर्यामी पर्याय हैं, एक ही वस्तु के दो नाम हैं। एक शरीर में उसे आत्मा बोलते हैं और सर्वभूतांतरात्मा जब कहते हैं तो उसी को अंतर्यामी बोलते हैं। तो इस रूप से ये सबको, सारे संसार को अपने वश में रखता है, न कि एक जगह बैठा हुआ और अपनी शक्ति से वो सबको वश में रखता है। ये मुसलमान, ईसाई या और भी जो अपने उपासक समूह है, वो जैसा मानता है कि एक जगह बैठा है परमात्मा और वहीं से सबको हिला रहा है, चला रहा है। उमादार जोशित की नाई, सबई नचावत राम गुसाई। तो बोले वो डोर लगी हुई है उसकी, तो बैठा हुआ है वहां और सब में डोरी बांध रखी है, उसने सबको नचा रहा है। तो ऐसा वेदांत में बोले भाव के लिए तो सब ठीक है, उपासना के लिए सब ठीक है। उपासना कोई चीज नहीं होती है, उपासना तो एक भाव होता है। आप जैसा भाव कर दो, बना लो वैसा ही भाव है नारायण। अच्छा, परमात्मा स्त्री है कि पुरुष है? अब जो देवी को मानते हैं वो कहेंगे कि स्त्री रूपा है, और जो नारायण को मानते हैं वो कहेंगे पुरुष रूपा है। अरे तो स्त्री पुरुष तो हमारी दृष्टि में है ना, तो जिसको जैसा भाव दृढ़ा दिया जाता है गुरु लोग, यम यम भावम दर्शयत मांडुक्य कारिका में कहा कि जिसको जैसा भाव दृढ़ा दिया जाता है बस उसे वैसा ही दिखने लगता है। तो कैसे वश में रखता है कुतः कि सर्वभूतांतरात्मा, सब भूतों का अंतरात्मा होने से सबको अपने वश में रखता है। अब यहां एक पंक्ति बोले अंतरात्मा होकर के करता क्या रहता है, यहां बैठा हुआ कैसे सबको नचाता है। तो कहते हैं यत एकम एव सदैक रसम आत्मानम विशुद्ध विज्ञान रूपम नाम रूपादि अशुद्ध उपाधि भेद वशेन बहुधा अनेक प्रकारम यह करोति स्वात्म सत्ता मात्रेण अचिंत्य शक्तित्वात्। ये जो परमात्मा है ये सत्चित और आनंद है, इतनी बात तो मानने में किसी को आपत्ति है ही नहीं कि सच्चिदानंद है, सत है, चित है, आनंद है। तो महाराज श्री ने कहा है कि जरा इसे मजेदार दृष्टि से विचार करो। मजेदार दृष्टि क्या है कि भगवान ने सोचा कि हमारा आनंद जो है वो बढ़ जाए, तो अब सच्चित आनंद जो है उसमें आनंद बढ़ तो सकता नहीं, क्योंकि अनंत भी तो है ना, अद्वय है। जब दूसरा कोई है ही नहीं तो आनंद बढ़े कैसे, चित बढ़े कैसे, सत अपनी सत्ता बढ़े कैसे। तो भगवान ने क्या किया कि जैसे मूर्ति तो एक ही है, हमारे मंदिर में आश्रम में जो मंदिर बना हुआ है वृंदावन में, यहां भी होंगे तो कांच लगा दो, मूर्ति बीच में रख दो और दो पैरेलल मिरर्स एक इधर लगा दो, एक इधर लगा दो। अब इधर देखोगे तो अनंत मूर्तियां दिखलाई पड़ेंगी, इधर देखोगे तो अनंत मूर्तियां दिखलाई पड़ेंगी। तो वो क्या है कि एक ही ऑब्जेक्ट होता है और उसकी एक शीशे में इमेज बनी, प्रतिबिंब बना, और एक शीशे में प्रतिबिंब बना। अब ये जो दो प्रतिबिंब हो गए एक के, फिर ये स्वयं ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, फिर इस इमेज की इमेज इधर बनेगी और इस इमेज की इधर इमेज इधर बनेगी, फिर वो प्रतिबिंब हो जाएंगे, फिर उनकी इधर बनेगी, फिर उनकी इधर बनेगी। तो एक ही मूर्ति जो है वो अनंत रूपों में दिखलाई पड़ने लगती है। तो ये परमात्मा क्या करता है कि ये अपना आनंद कैसे बढ़ाता है, तो बोले कि ये अंतःकरण रूपी दर्पण जो है इसने अनेक दर्पण बना दिए। अंतःकरण जो है ये दर्पण के मानिंद हैं। अब इसमें परमात्मा जो है, आत्मा जो है, उसके अनंत प्रतिबिंब बन रहे हैं। अब अगर एक हाथ हिलाएगा तो सारे हाथ हिलाएंगे, एक हंसेगा तो सब हंसेंगे। नारायण, तो सब क्यों हंसना चाहते हैं? देखो ना, सारे जीव जो है कोई दुखी थोड़ी होना चाहते, सब हंसना ही चाहते हैं। क्योंकि परमात्मा हंस रहा है तो उसकी सारी मूर्तियां हंस ही रही हैं। बोले दुखी क्यों होना चाहते हैं फिर, परमात्मा भी दुखी होता है क्या? बोले कभी नाटक करना होता है तो दुखी भी हो जाता है। जो जो भाव दिखावे आप न हो वे सोए। तुलसीदास जी ने लिखा कि ये राम जी के जो चरित्र हैं वो कैसे हैं कि जैसे नट होता है एक्टर, तो वो स्टेज पे आकर के कभी रोता है कभी हंसता है, जब रोता है तो दर्शक भी हंसने रोने लगते हैं, जब हंसता है तो दर्शक भी हंसने लगते हैं। तो असल में वो रोता भी नहीं है और हंसता भी नहीं है, वो तो सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। तो जोई जोई भाव दिखा वही आप न हो वही सोए, जैसा जैसा भाव दिखाता है वैसा वैसा होता नहीं है। एक हंसाने के लिए दृष्टांत था, एक सज्जन थे तो वो महाराणा प्रताप का पाठ कर रहे थे। अब कहानी तो दृष्टांत तो सब गड़े हुए ही होते हैं, तो स्टेज पे से जैसे थे वैसे ही उठकर चल दिए। जब शो खत्म हो गया, ग्रीन रूम में जाने के गुने भूल गए, तो जो कपड़े पहने हुए थे महाराणा प्रताप के उसी को पहन के चल दिए, जाके अपने बस में बैठ गए। तो बोले कि कहाँ जाना है, बोले हल्दी घाटी। वो अब उनको तो वही जुनून चढ़ा हुआ था कि मैं महाराणा प्रताप हूं। तो उसने कहा टिकट, तो बोले कि मैं महाराणा प्रताप हूं, हल्दी घाटी मेरी है, मेरे से टिकट मांगते हो। वो समझ गया इसका कुछ दिमाग खराब दिखता है। तो जब वो बस पहुंच गई हल्दी घाटी तो बोले उतरिए महाराणा प्रताप। अब वो जहां उतरना था वहां उसे कुछ याद ही नहीं था, वो तो महाराणा प्रताप के उसमें था, उतर गया जंगल में। जब उतर गया तब होश आया कि मैं कौन हूं, कहां हूं, नारायण। तो कभी कभी नाटक करने के लिए हंसना रोना भी पड़ता है। तो ये सब परमात्मा का नाटक हो रहा है, अनेक रूपों में परमात्मा ही नाट्य कर रहा है। जहां हंसने का है वहां हंस रहा है, जहां रोने का है वहां रो रहा है। यही उसका नियमन है। ऐसा नहीं है कि वो किसी को रुलाता हो या किसी को हंसाता हो, वो स्वयं ही हंसता है और स्वयं ही रोता है। और चूंकि वो अकेला होता है और दर्पण अनेक होते हैं, इसलिए उसमें अनेकता का भ्रम हो जाता है। तो सदैक रसम आत्मानम विशुद्ध विज्ञान रूपम, है तो ये विशुद्ध विज्ञान रूप, लेकिन नाम रूपादि अशुद्ध उपाधि भेद वशेन बहुधा अनेक प्रकारम यह करोती। तो एक ही रहता हुआ जैसे दर्पणों के कारण अनेक मालूम पड़ने लगता है, इसी प्रकार से ये अनेक प्रकार का परमात्मा मालूम पड़ता है। एको रूपम एकम रूपम बहुधा यह करोति, ये महाराज जी का वो है ना मोटो, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, है तो वेद की ऋचा है। एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, सत एक ही है लेकिन विद्वान लोग उसको बहुत प्रकार से कहते हैं। ऐसे ये भी है, एकम रूपम बहुधा यह करोति, वस्तु एक ही है लेकिन ये माया से अपनी अचिंत्य शक्ति से अपनी सच्चित आनंद शक्ति से, ये माया और कुछ नहीं है। सच्चित आनंद को जब हम सच्चित आनंद के रूप से नहीं देखते हैं तब उसी का नाम माया हो जाता है। सत और आनंद का अविवेक माया है, और सत और चित का अविवेक प्रकृति है। प्रकृति अन्य जो द्वैत सिद्धांत में अलग मालूम पड़ती है प्रकृति, वो सत और चित को एक न मानने के कारण है। प्रकृति सत है और पुरुष जो है वो चित है। तो सत और चित में जब द्वैत हो गया, माने एक नहीं माना उसको, तो पुरुष प्रकृति हो गए। और सत और आनंद को जब एक नहीं माना तब उसी का नाम माया हो गया। एकम रूपम बहुधा यह करोती, मैं अपने आनंद को कैसे बढ़ाऊं, तो बोले बस ये बहुधा यह करोती, बहुत रूप हो जाता है। तो यहां अशुद्ध उपाधि भेद, उपाधियों की रचना हो जाती है। ये उपाधि सब प्रतिबिंबवत हैं। ये दूसरे पैराग्राफ में कहते हैं, नहीं शरीरस्य आधारत्वम आत्मनः आकाशवत अमूर्तत्वात् आदर्शस्थम मुखम इति यद्वत्। जैसे दर्पण में अपना मुख अनेक दिखता है, बस इसी प्रकार से ये परमात्मा में सारा प्रपंच दिख रहा है। चलो 8:30 तो हो गए। इसी को जो अपने आत्मा के रूप में देखते हैं उनको ही शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। शेष चर्चा फिर। हरिः ओम् पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम् शान्ति शान्ति शान्ति।